नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंता बिस्व सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री सरमा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री सरमा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नबन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 5 मंत्रियों को विभागों का वितरण किए जाने की उम्मीद है। इन्होंने शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठकों में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत अलग रखा जाएगा। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समयानुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमरीका के नागरिकों के आज पहुंचने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर 2 भारतीयों सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वो नेटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचायेव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरों के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे सकता। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया था। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।